Thank you for being here this evening.
आप सब यहाँ शाम आए उसके लिए धन्यवाद.
In this great city of Belgaum, home of thousands of devotees of Sri Krishna.
बेलगाम के इस शहर में करीब हजारों भक्त श्री कृष्ण के.
Special gratitude to Vrindavan Prabhu, who first came to establish Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada's mission here in Belgaum.
विशेष कृतज्ञता इस वृंदावन प्रभु के प्रति जो यहाँ पर सबसे पहले आए चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद के मिशन को स्थापित करने के लिए.
In a very humble way, he came from Mumbai back to his home of Belgaum to share the great gift of bhakti.
वो बहुत नम्रता से मुंबई से आए यहाँ पर बेलगाम में कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए.
And after taking this precious seed of devotional service and watering it for many years, a beautiful tree with so many flowers of wonderful devotees had come.
उस बीज को पानी डालने के बाद वो सुंदर वृक्ष प्रकट हुआ जिसमें बहुत सारे सुंदर भक्त के रूप में फूल प्रकट हुए.
And seeing the great potential of all of you and this place in Karnataka or Maharashtra, there are different opinions. His Holiness Bhakti Rasamrita Maharaj came at a time when there was a very, very great need in the Vaishnav community.
और उसके पश्चात इसलिए भक्ति रसामृत महाराज आए जब यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी वैष्णव समाज में.
And he gave his very heart and his soul to all of you, and has.
और उन्होंने अपना पूरा हृदय और जो है सब कुछ आपको अर्पण किया.
To give so much strength, enthusiasm, and faith.
बहुत श्रद्धा और उत्साह प्रकट करवा.
I am very grateful, but both of these two illustrious personalities are sitting beside each other tonight, just in front of all of us.
और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि दो महात्मा जो है एक साथ यहाँ पर हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं.
Vrindavan Prabhu has recently written the first English translation book from a Vaishnav perspective about the great Paramhamsa Vaishnav saint of Maharashtra, Tukaram.
कुछ दिन पहले श्री वृंदावन प्रभु ने महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज के बारे में पहली बार अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है.
Bhakti Rasamrita Maharaj is a Shiksha Guru and an inspiration for tens and thousands of people all over the world.
और भक्ति रसामृत महाराज पूरे विश्व में हजारों भक्तों के लिए शिक्षा गुरु और प्रेरणा के स्तोत्र रहे हैं.
At a time of great need, he was called from Belgaum to be the temple president of Srila Prabhupada's home, Sri Vrindavan Dham.
जब बहुत आवश्यकता थी तब उनको बेलगाम से बुलाया गया श्रील प्रभुपाद जी के घर वृंदावन में प्रेसिडेंट के रूप में.
फॉर मेनी इयर्स ही गेव हिज हार्ट टू प्रभुपाद्स हार्ट.
और कई वर्षों तक उन्होंने अपने हृदय को प्रभुपाद के हृदय को समर्पित किया.
आफ्टर एस्टैब्लिशिंग वंडरस वंडरफुल सर्विस इन वृंदावन ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रीच in various parts of India and the whole world.
और बाद में वृंदावन की सेवा के बाद उनको बुलाया गया भारतवर्ष में और पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए.
But I don't think a day ever can pass without him lovingly remembering Belgaum, just like a mother or father remembers their child.
मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी नहीं बीता होगा कि जब ये कभी बेलगाम को याद नहीं करते होंगे जैसे माता पिता अपने संतान को याद करते हैं.
With great concern, always, and an eagerness to do everything to serve you.
और उनकी बहुत चिंता रहती है और बहुत उत्सुकता रहती है आप सबकी सेवा को करने के लिए.
And to all of the devotees, from the very beginning, who have remained faithful to Srila Prabhupada's mission of compassion, even through many sunny and stormy times.
और सब भक्तों के प्रति जो श्रील प्रभुपाद जी के मिशन पर वफादार रहे हालांकि बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा.
And to all of you who are either committing your lives to this path of compassion or taking interest.
और आप सबके प्रति जो अपना पूरा जीवन अर्पण कर रहे हैं इस मार्ग पर या रुचि ले रहे हैं.
I was listening today to a recorded lecture of Srila Prabhupada.
आज मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया एक प्रवचन सुन रहा था.
It was a section from the sixth canto of Srimad Bhagavata.
श्रीमद् भागवत के छठम स्कंद से है.
Where the Yamadutas were coming for Ajamil.
यहाँ पर यमदूत अजामिल को पकड़ने आ रहे थे.
But somehow, due to his natural attachment to his youngest son, he called out his name just at the point when he was about to die, Narayan.
मृत्यु के समय अपने पुत्र के आसक्ति के कारण उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया नारायण.
The Yamadutas were stopped by the Vishnu Dutas, who suddenly appeared.
विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया.
They went back to Yamaraj.
वापस यमराज के पास.
And said, "How is it possible if you are the supreme person within this universe? How could anyone stop us?"
उन्होंने कहा कि अगर आप ही परम पुरुष हैं तो कैसे कोई व्यक्ति आपको रोक सकता है?
And Sri Yamaraj told them that famous verse. That anyone who is a servant of Lord Hari, Vishnu, anyone who chants the name of Narayan, anyone who bows down or remembers Narayan, never look even in their direction.
वो श्लोक बताया जो भगवान का नाम लेता है या उनको झुककर झुकता है या उनकी सेवा करता है उस तरफ आप देखना भी मत.
Even I am the servant of the servants of Lord Narayan.
मैं भी भगवान नारायण के सेवकों का सेवक हूँ.
In the progress of his lecture, Srila Prabhupada was explaining how Krishna is not different than his name.
और उस प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है.
And he makes himself accessible. Especially in this age of Kali, through his name.
और विशेष करके कलयुग में भगवान अपने आप को नाम के रूप में उपलब्ध करते हैं.
Because this is an age where we are so prone to forget who we really are and what our real purpose is.
ये युग ऐसा है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है.
Sharanagati, for one who sincerely and honestly takes shelter of Krishna. That person can feel and see Krishna everywhere.
जो व्यक्ति सच्चे दिल से कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है वो सब जगह पर कृष्ण को देख सकता है.
In every situation, he sees an opportunity to serve Krishna.
हर स्थिति में वो देखता है कि कैसे कृष्ण की मैं सेवा कर सकूं.
Even difficult situations. If we look for that opportunity, Krishna will manifest himself.
कठिनाइयों में भी अगर हम ढूंढेंगे तो कृष्ण ऐसी सेवा का अवसर प्रकट करेंगे.
प्रेमांजन छोड़ित भक्ति विलोचनेना. Krishna reveals himself to one who has love.
Krishna us bhakti prakat hote hai jinke paas prem hai.
Prema paramartha mahan. This is the true purpose of yoga, of religion, of human life, is to awaken the love for Krishna that is within us.
Sachcha uddeshya dharma ka hai कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना.
कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव.
कृष्ण सर्वाकर्षक.
इन द भगवद गीता कृष्ण टेल्स दैट ऑल द ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट अट्रैक्ट आवर अटेंशन दे आर ऑल बट अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर.
भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी सुंदर चीजें हमारे मन को आकर्षित करते हैं वो उन्हीं के शक्ति का एक अंश है.
People become so attracted to the opposite sex, to material objects, to prestige, to fame, to jewels. There are so many different things that attract people to different types of music or cinema.
लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों से आकर्षित होते हैं जैसे सिनेमा सुंदर चीज़ें और अनेक भौतिक चीज़ों से लोग आकर्षित होते हैं.
But actually the source of all attraction is Krishna.
वास्तव में सब आकर्षण के स्रोत कृष्ण हैं.
The light of the sun is just a reflection of the light emanating from the body of Krishna.
सूर्य का प्रकाश है वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले प्रकाश का एक प्रतिबिंब है.
Krishna's hundreds of trillions of quadrillions of times brighter than the sun. His transcendental body.
Krishna ka divya sharir jo hai wo surya se hazaron karodon guna zyada prakashmay hai.
But yet is so soothing and pleasurable to see.
Aur wo itne anandayak hain aur bahut hi prerna dene wale hain dekhne mein.
Satchit ananda vigraha. His body is eternal, full of knowledge and full of bliss, and he is the ultimate object of everyone's attraction.
कृष्ण का स्वरूप जो है शाश्वत है ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से भरा हुआ है और वह सबके आकर्षण के लिए केंद्र है.
पत्रम पुष्पम फलम तो यम यौमे भक्त प्रयाच्छति. एंड कृष्ण अट्रैक्ट्स आवर हार्ट व्हेन वी ऑफर सिंपल एंड हम्बल डिवोशन.
कृष्ण हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं जब हम कोई नम्र सरल भक्ति अर्पण करते हैं.
Even if we offer a leaf or a fruit or a flower or water with love, Krishna will reveal himself. He will accept it.
अगर हम प्रेम से पत्ता या जल या फल जो भी अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he would say, do not try to see Krishna. Try to serve Krishna. So that he's pleased to see you.
श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आपको देखना चाहे.
Then Krishna reveals himself to us. Then we can see him.
जब कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं तब वो हो सकता है.
When Krishna bestows his mercy upon us, then he reveals himself.
जब कृष्ण हमारे पर दया करते हैं तब वो अपने आप को प्रकट करते हैं.
He doesn't reveal himself because of our position, because of our skills, because of our fame. He reveals himself because we want to please him, because we want to love him.
भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हमारे भौतिक योग्यताओं के कारण बल्कि जब हम उनकी सेवा करना चाहते हैं प्रेम करना चाहते हैं तब वो प्रकट होते हैं.
सत्संग सत्संग मंडला सेवक. दैट कॉन्सेप्ट इज द वेरी एसेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस.
सत्संग मंडल सेवा जो है ये कृष्ण भावना का सार है.
वी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर टू ऑलवेज रिमेन फोकस्ड ऑन दैट ट्रूथ.
हम एकत्रित होते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को साथ मदद कर सके हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के
having position having power having fame all these things are just distractions
और पद होना और महिमा होना ये सब बस हमको पथभ्रष्ट कर सकते हैं
if we use them in the service of krishna with humility toward the vaishnavas then they can be very very excellent tools
अगर हम नम्रता से इन चीज़ों को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण हो सकते हैं
But if we have attachment for those things, then we lose our devotion.
लेकिन अगर हमें इन चीज़ों के प्रति आसक्ति हो जाती है तो हम भक्ति खो बैठते हैं
In satsang, we speak about Krishna.
सत्संग में हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं
We speak about the path of true bhakti. And we help each other to overcome these materialistic attractions.
हम भौतिक आसक्तियों से एक दूसरे को भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए हम मदद कर सकते हैं.
Srama eva hi kevalam. Everything is useless unless they please Krishna, unless they help us to develop a taste for hearing and chanting Krishna's names and glories with love.
सब कुछ बेकार है अगर वो हमें भगवान कृष्ण के प्रति श्रवण और कीर्तन में रुचि जागृत नहीं करता
A few days ago was Basant Panchami.
कुछ दिन पहले बसंत पंचमी का दिन था
It is the beginning of the spring season.
कि बसंत ऋतु का आरंभ है
It is a festival where we Remember the beautiful pastimes of Vrindavan.
ये समय है जब हम वृंदावन की सुंदर लीलाओं को स्मरण करते हैं.
Vasant Panchami is known as the time when flowers are in full bloom.
जब ये वसंत का समय होता है जब फूल जो है प्रकट होते हैं.
And the devotees take those flowers and offer them to Krishna.
और भक्त उन फूलों को लेकर भगवान को अर्पण करते हैं
When devotees see a flower in full bloom, they're so happy because they think this is such a nice offering for Krishna.
जब भक्त फूलों को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कृष्ण के लिए अर्पण करने योग्य
The color, the shape, the fragrance, so beautiful for Krishna.
और उनका रंग और उनकी सुगंध वो बहुत सुंदर है क्योंकि वो कृष्ण के लिए
And Krishna is happier when the devotees with love offer him simple flowers than even the most exquisite and expensive jewels.
और कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्ति से सरल फूल भी अर्पण करता है बजाय उसके कि बहुत सारे आभूषण अर्पण करने के.
Because Vrindavan is a village.
वृंदावन एक गांव है.
Sudarshan Prabhu and his associates have created this very extraordinary little village behind us tonight.
Sudarshan Prabhu aur dusre bhakton ne milke bahut sundar gram yahan par banaya hai.
There's villagers making ropes and making clay pots and weaving cloth with cotton.
और यहाँ पर रस्सी बना रहे हैं और मटके बना रहे हैं बहुत सारी ग्राम की चीज़ें
there's oxens and there's pigeons.
यहाँ पर बैल हैं कबूतर हैं
so we are all in a very nice village.
सुंदर ग्राम में हैं
The opulence of a village is in simple things.
और ये सरल चीज़ें हैं ग्राम के
Vrindavan is the highest abode of the spiritual world. It's so simple.
Vrindavan sabse uncha sthan hai adhyatmik jagat mein.
Every grain of dust of Vrindavan is more precious than all the jewels of the heavenly worlds.
Vrindavan ka har dhool ka kan jo hai swargalokon ke sab maniyon se bhi zyada मूल्यवान है
द रीजन बिकॉज दैट डस्ट इज चिंतामणि
उसका कारण यह है
द जूल्स ऑफ द हेवनली वर्ल्ड कैन मेक अस लुक वेरी ब्यूटीफुल But the dust of Vrindavan can awaken our ecstatic love for Krishna and fulfill all our soul's desires.
क्योंकि जो स्वर्ग के जो मणियाँ हैं वो तो भौतिक आकर्षण जागृत कर सकते हैं लेकिन जो वृंदावन की धूल है वो हमारे भगवान के प्रेम को जागृत कर सकते
You can offer the ornaments and jewels of heavens to Krishna, and that's very nice. But by coming in contact with the dust of Vrindavan, whatever we offer is with ecstatic love, which is most nice.
वृंदावन के अगर हम वृंदावन की धूल जो है वो भगवान के आकर्षण को जागृत करती है और अगर हम भौतिक स्वर की चीज़ें भी भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भी अच्छा है
The flowers of spring, when they're blooming and they're spreading their fragrance, they're only doing it for the satisfaction of Sri Radharani and Krishna.
संत के फूल भी जो है जो प्रकट हो रहे हैं वो श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हैं
At the time of Basant Panchami, Sri Radha Govinda Dev performed their Rasleela at Govardhan.
बसंत के समय राधा गोविंद जो है गोवर्धन में अपनी लीला प्रकट करते हैं
There is the Rasastali, Chandra Sarovar, Sri Radha Kund, Shama Kund, all of these beautiful pastime places and more.
ये सब लीला के स्थली हैं चंद्र सरोवर राधा कुंड श्याम कुंड
This is the beauty of spring in Vrindavan.
ये वसंत की सुंदरता है वृंदावन में
On this particular day, it is also the appearance day of Sri Raghunath Das Goswami.
ये जो दिन है वसंत पंचमी का वो दिन है जब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट हुए
He resided in the last years of his life in this world on the banks of Shama Kund and Radha Kund at Govardhan.
अपने जीवन के आखिरी वर्षों में वो गोवर्धन के तट पर राधा कुंड और श्याम कुंड के पास रहे
He is our Prayojan Acharya.
वे हमारे प्रयोजन आचार्य हैं
Lord Chaitanya told that of all the Vedic literatures, the four Vedas, 108 Upanishads, the Itihastas, Mahabharat, the Ramayana, the Samhitas, all of these scriptures, the sutras, Vedanta sutras, ultimately they all give three principal teachings, Sambandha, Abhideya, and Prayojana.
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सारे शास्त्र सारे वेद सारे उपनिषद अंततः तीन चीज़ों का वर्णन करते हैं और वो है संबंध अभिधेय और प्रयोजन
संबंध इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप एज इटर्नल सोल्स विद कृष्णा
संबंध का अर्थ है कि जानना कि क्या हमारा भगवान के साथ संबंध है
एंड इन द presence of that relationship with Krishna, what is our relationship with our body and our mind and with other people and with Mother Nature?
और उसी दृष्टि से हमारा क्या संबंध है शरीर मन और प्रकृति के साथ में
Jivera Swarupo Krishna Ranitya Das. This is Sambandha. We are all eternally loving servants of Krishna. We have simply forgotten.
संबंध का मतलब है जानना कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं
But in the association of Vaishnavas, satsang, we re-establish that relationship.
वैष्णव के संग में हम इस संबंध को फिर से स्थापित कर सकते हैं.
Abhideya means to engage in the nine processes of devotional service with sincere attachment.
अभिधेय का मतलब है कि भक्ति की नौ विधा में पूर्ण 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 भक्ति के साथ लगना.
It is the dynamic act of life. Of living as an eternal servant of Krishna.
वो जीवन का एक पहलू है जिसे भगवान के सेवक के रूप में जीवन बिताना है।
यत करोषि रशनासि यज्जहोषि ददासि यत whatever we do, All of our thoughts, all of our words, all of our austerities, all of our sacrifices, everything should be done for Krishna's pleasure.
हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी तपस्या करते हैं, खाते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए.
And when Lord Chaitanya was asked by Sarvabhauma Bhattacharya of the 9 processes of devotional service, Sravana Kirtana Smarana Bandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Atmani Vedana, what is most important?
Sarvam Bhattacharya ne Shri Chaitanya Mahaprabhu se pucha ki bhakti ke jo 9 vidhi hain unme se sabse mahatvapurna kya hai.
Lord Gauranga responded, Kirtan, the chanting of the names and glories of the Lord.
भगवान चैतन्य अपने जवाब दिया कि कीर्तन भगवान के नाम और महिमा का गान करना.
That in this age of Kali, which is an ocean of faults, simply by chanting the names of Krishna, one can attain the perfection of liberation.
कलयुग ये दोषों की निधि है, लेकिन उसमें एक महान गुण है कि सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करने से सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सके.
And through hearing and chanting with deep attachment, eventually we attain bhava, love for Krishna. And through continuing our devotional service, the flower of our bhakti blossoms into prem, the ultimate perfection.
और श्रवण और कीर्तन के मार्ग को अपना के धीरे धीरे हमारा जो भक्ति का जो फूल है वो प्रेम के रूप में प्रकट होता है.
Where we realize our eternal relationship with Krishna in the spiritual world, and we act with that love, even in this world.
जब हम समझ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को और उस संबंध में प्रेम से व्यवहार करने लगते हैं.
And that pure love in the mood of the gopis is prayojana.
और ये शुद्ध प्रेम जो है ये गोपियों के भाव में है प्रेम.
Raghunath Das Goswami is the acharya that is exemplifying the highest level of love in prayojana.
रघुनाथ दास गोस्वामी एक आचार्य हैं जो इस सबसे प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था प्रयोजन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
But where did it begin in his life in this world?
और उनके जीवन में इसकी शुरुआत कहां से हुई?
He was a very wealthy child.
वो बहुत ही अमीर परिवार से थे.
He was the only heir of his father and uncle's fortune.
वो अपने पिता और चाचा के संपत्ति के एकमात्र अधिकारी थे.
Govardhan and Hiranya were zamindars who were like local kings of a large tract of land.
Govardhan aur Hiranya Majumdar jo hai wo zamindar the jaki bilkul raja ke hi saman the us ilake ke.
They were famous. They were extraordinarily wealthy, like billionaires, and they were very, very powerful.
Bahut shaktishali the, bahut dhanshali the, karodpati arabpati ke saman the.
They rejoiced because Raghunath was so highly qualified in every way.
वो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि रघुनाथ हर तरीके से बहुत योग्य थे.
Everything they lived for, everything they worked for, everything all of their forefathers had sacrificed for, they knew they could pass on to Raghunath and it would be glorious.
जो भी चीज़ें जिनके उन जीवन बिताया जो प्राप्त किया वो जानते थे कि ये सब चीज़ें जो है रघुनाथ को प्राप्त हो सकती हैं.
They were devotees.
वे भक्त थे.
But they were very materially attached also.
लेकिन वो भौतिक रूप से बहुत आसक्त भी थे.
Their guru and priest, Yadunandan and Balaramacharya, they brought little Raghunath when he was a child to Chandpur to meet with Srila Haridas Thakur.
उनके गुरु श्री यदुनंदन आचार्य छोटे बालक रघुनाथ को चांदपुर में ले आए श्री हरिदास ठाकुर का संग करने के लिए.
We described yesterday evening that Thakur Haridas, although born in a family that was socially rejected as untouchable. The great Vaishnavas worshipped him, honored him, because of his pure, unalloyed love for Krishna and his limitless compassion to all beings.
हमने कल वर्णन किया कि हालांकि श्री हरिदास ठाकुर एक बहुत ही निम्न परिवार से थे, लेकिन उनका बहुत आदर करते थे वैष्णव, क्योंकि उनकी बहुत दया की भावना थी सारे जीवों के प्रति.
He had no attraction for anything that Maya could present to him, because param drishtva nivartate. He was experiencing something infinitely sweeter and more pleasing and higher.
उनको माया की किसी की चीज़ के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ का अनुभव कर रहे थे जो अनंत गुना ज़्यादा मधुर थी.
And that was the chanting of Krishna's names.
और वो था भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
And if we chant with a humble service attitude and very, very sincere attention,
और वो बहुत ही सेवा भावना से और बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते,
and like any medicine, to take it in a very regular way,
और एक दवाई की तरह अगर उसको हम नियमित रूप से लेते हैं,
एनेचि असादि माया नाशिबरो लागे हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे. Then it is the medicine that will cure our illusion and awaken our taste for the name.
ये एक दवाई है जो कि हमारे भ्रम को दूर करती है और नाम के आकर्षण को जागृत करती है.
हरिदास ठाकुर, he had no material possessions.
हरिदास ठाकुर के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी.
He had no residence.
उनका कोई निवास स्थान नहीं था.
Wherever he went, people ridiculed him. They tried to kill him.
जहाँ भी वो जाते लोग उनका मजाक करते और कई बार मारने का प्रयास करते.
All he wore was an old kopan.
और बस एक पुराना कोपिन पहनते.
Stay in caves.
और बस
and in jungles.
गुफाओं में जंगल में रहते.
And here is Raghunath, who's living in a beautiful, incredible estate. He's like a prince of kings.
और छोटे बालक रघुनाथ जो कि राजकुमार के समान हैं.
And as a child, when he saw Haridas Thakur, he felt the divine presence of this Vaishnav saint. When he saw his compassion for all beings, Raghunath, with firm conviction, decided, I want what he has.
Raghunath Das Goswami ne jab Haridas Thakur ke divya gunon ko dekha, तब उन्होंने दृढ़ रूप से निश्चय किया कि मुझे वह चीज चाहिए जो इनके पास है.
Materialistic people, when they want what you have, then they try to conquer you or take it away from you.
भौतिक व्यक्ति जो है, जब कोई चीज आपके पास से लेना चाहते हैं तो वो उसको छीनने का प्रयास करते हैं.
But a Vaishnav, Raghunath Das Goswami, wanted what Haridas Thakur had, so he wanted to worship him forever and follow in his footsteps and serve him and please him.
लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए चाहते थे उस चीज को जिससे वे उनके पदचिन्हों में चल सके, उनकी पूजा करें और उनको प्रसन्न करें.
That's the difference between material consciousness and spiritual consciousness.
ये भौतिक चेतना में और आध्यात्मिक चेतना में अंतर है.
In the world of Maya, when we want what somebody has, we want to somehow or other get it, take it.
इस भौतिक माया की दुनिया में जब हमें कोई चीज चाहिए दूसरों के पास, तो किसी तरीके से हम छीनने का प्रयास करते.
Have it for myself.
मेरे लिए प्राप्त हो.
But in Vaishnavism, when we want what somebody has, love for Krishna, we honor them. We want to please them. We want to serve them forever.
लेकिन वैष्णव जगत में अगर हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनकी सेवा करना चाहते हैं.
And there's no other way of receiving it.
और उसको प्राप्त करने का और कोई तरीका भी नहीं है.
महाजनो येन कथा सपन्था. रघुनाथ दास गोस्वामी had no longer any attraction for anything of this world. He simply wanted to love Krishna, serve Krishna.
रघुनाथ दास गोस्वामी को इस भौतिक दुनिया की कोई चीज़ नहीं का आकर्षण नहीं रहा. वो सिर्फ कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे.
प्रेम निधि, द ट्रेजर ऑफ लव इज द ओनली रियल ट्रेजर.
प्रेम निधि जो है, प्रेम का खजाना, यही असली खजाना है.
मटेरियल ट्रेजर्स जस्ट एजिटेट द हार्ट.
भौतिक खजाना जो है हृदय को विचलित करता है.
And eventually, and they're so hard to hold on to, and it's all taken away at death.
उसको संभाल के रखना मुश्किल है और अंत में वो छीन लिया जाता है.
Prem nidhi is our eternal inheritance.
प्रेम निधि जो है वो हमेशा के लिए हमारी संपत्ति है.
It's infinite.
वो अनंत है.
The more we distribute, the more we realize we have.
जितना ज़्यादा हम वितरित करते हैं, उतना हम जानते हैं कि वो हमारे पास.
Srila Prabhupada explained it in this way: the more you help, the more you give Krishna to others, the more Krishna gives Himself to you.
Srila Prabhupada समझाते हैं कि जितना हम दूसरों को कृष्ण बांटते हैं, उतना कृष्ण अपने आप को हमें और देते हैं.
If you have 1,000 rupees and you give 1,000 rupees, you have nothing left.
अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और अगर आप 1,000 रुपये बांट देते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा.
But if you have 1,000 if you have the realization of Krishna 1,000 times and you give that 1,000 to others, then you get 100,000.
लेकिन अगर 1,000 गुना आपके कृष्ण का साक्षात्कार है और आप दूसरों को बांटते हैं तो आपको 100,000 की प्राप्ति हो जाती
है. In giving we receive.
और बहुत ज्यादा.
And we don't give to receive. We give so that others will receive. And when we have that consciousness, Krishna gives Himself more and more and more.
और हम इसलिए नहीं देते कि हमें कुछ मिले बदले में, लेकिन जब हमारी चेतना होती है तब कृष्ण अपने आप को हमें और ज़्यादा प्रदान करते हैं.
So Raghunath Das Goswami, he was living in a beautiful home with so many servants and maid servants, and he had a young, beautiful, faithful wife, and he had so many people around him who were honoring him and respecting him, and all he wanted is what Haridas Thakur had, love for Krishna.
रघुनाथ दास गोस्वामी का सब कुछ था, सुंदर घर था, नौकर थे, पत्नी थी, लेकिन वही चाहते थे जो हरिदास ठाकुर के पास है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम.
If you imitate him, you will die. But to understand the principle and follow in his footsteps is the path of perfection.
ऐसे भक्तों के पदचिन्हों में चलना यही पूर्णता का मार्ग है.
So eventually Raghunath left his home, and for 16 years he was the servant of Lord Chaitanya in Sri Puri Dham.
अंततः उन्होंने घर त्याग दिया और 16 वर्ष के लिए वो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सेवक के रूप में निवास करते थे.
स्वरूप दामोदर गोस्वामी was the personal secretary of Lord Chaitanya, and Raghunath Das Goswami was his assistant.
श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सेवक थे.
He was so humble, even though he was in the presence of Lord Chaitanya almost constantly. He always felt himself unfit to speak to him. Whatever he wanted to say or hear was through Swarup Damodar Goswami, servant of the servant. And yet this mood is considered to be the most exalted state of prayojana.
वो इतने नम्र थे कि हालांकि वो महाप्रभु के पास में थे, वो महाप्रभु से कुछ बात नहीं करते बल्कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी से प्रश्न पूछते, और इस तरह से वो दास और दासानुदास भाव में थे, जो कि एक वैष्णव का सर्वोच्च गुण होता है.
His renunciation was amazing.
Unka vairagya bada adbhut tha.
But it was all based on his love.
Aur wo sab prem par aadharit.
And after some years, Lord Chaitanya gave Raghunath Das Goswami his own personal Shalagram Shila that he would cry in ecstasy and with tears moistening that Shila as he held it to his eyes and his heart.
और कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं की शिला जो उनके आंखों के प्रेम के अश्रु से मिश्रित थी वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की.
Because Lord Chaitanya in the mood of Sri Radha saw Sri Giriraj as the body of Sri Krishna.
क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में गिरिराज जी को भगवान के देह से अभिन्न मानते थे.
He also gave Raghunath a gunja mala. Simple berries that grow in Vrindavan.
और ने रघुनाथ दास गोस्वामी के गुंजमाला भी प्रदान किए जो कि वृंदावन में उगते थे.
Those berries anyone could collect. They don't cost anything.
और ये जो फल हैं बड़े आसानी से कोई व्यक्ति एकत्र कर सकता है उसकी कोई कीमत नहीं है.
For Raghunath, the most precious jewels and rubies and emeralds and diamonds could not compare because he felt that in giving me this gunjamala, Lord Chaitanya has given me the shelter of Srimati Radharani.
Raghunath Das ke liye hajaron abhushan bhi utne mahatvapurna nahi the jitne gunjamala. क्योंकि उनको लग रहा था कि गुंजमाला देखकर भगवान ने मुझे राधा रानी की शरणागति प्रदान की है.
Eventually he went to Radha Kund, Shyama Kund and Govardhan.
अंततः वो राधा कुंड श्याम कुंड और गोवर्धन की ओर प्रस्थान किए.
At the time it was just a simple hole in the ground with some water in it.
और वो वहां पर बहुत सरल रूप से निवास करते.
But he saw the spiritual world.
लेकिन वो आध्यात्मिक दुनिया को देखते.
This is the power of satsang, as revealed in the lila of Sri Raghunath Das Goswami.
ये सत्संग का प्रभाव है जो रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला में प्रकट हुआ है.
Vasant Panchami is also the appearance day of Vishnu Priya.
Vasant Panchami jo hai Shrimati Vishnu Priya Devi ka bhi avirbhav divas hai.
She is the eternal consort of Lord Gaur Narayan, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Bhagwan Sri Chaitanya Mahaprabhu ke nitya shakti hain.
Vishnu Priya and Sachi Devi served their beloved Nimai with their hearts and their souls.
विष्णु प्रिया और सची देवी के लिए उनके प्रिय निमाई ही सब कुछ थे.
And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he loved his mother as Krishna loves Yashoda Mai, and he loved his beloved Vishnu Priya as his own eternal beloved consort.
और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से ऐसा प्रेम करते जैसे कृष्ण यशोदा माई से करते और विष्णु प्रिया से प्रेम करते जैसे उनकी नित्य शक्ति हो.
But for the purpose of spreading prema bhakti throughout the world, it was necessary for him to become a sannyasi.
In sab jagah par bhagwan ki krishna ki bhakti prachar karne ke liye ye avashyak tha ki wo sanyas le.
The night before the early morning when he left his home forever, he had a historical intimate talk with Vishnu Priya Devi.
Sanyas lene se pehle ki ratri mein unhone Vishnu Priya ke sath ek aitihasik vartalap kiya.
This is described in the Sri Chaitanya Mangal by Lochan Das Thakur.
Iska varnan Sri Lochan Das Thakur rachit Chaitanya Mangal mein iska varnan kiya gaya.
She was begging Sri Gauranga that you are my life, you are my soul, you are my everything. Please do not go.
Bhagwan Gauranga se nivedan kar rahe the ki aap mere pran hain, aap sab kuch hain, kripya aap chhod kar mat jaye.
Your widowed mother, how will she survive in your absence?
आपकी विधवा माता आपके अनुपस्थिति में कैसे जीवित रहेंगी?
And I've given my heart, my soul, my everything to you. I will not survive.
और मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा जीवित रहना.
Please stay home.
कृपया घर में रहें.
Lord Gauranga explained his purpose. To give Krishna consciousness to the forgetful souls of this world. He loved us so much, he was willing to leave his own mother and wife, the goddess of fortune and the supreme mother of the universe. He was to leave them all, to give all of us, even the most fallen souls, love for Krishna.
हम सब जो पतित जीवों हैं उनको भी कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता और अपनी पत्नी को त्यागने के लिए तैयार हो गए.
When Vishnupriya saw his compassion, her words with tears pouring from her eyes and from her heart.
जब विष्णुप्रिया ने उनके दया के भाव को देखा तब उनके शब्द आंखों में अश्रु प्रवाहित करते हुए बोले.
My beloved Lord, whatever pleases you is what will please me. Do what you must do.
मेरे प्रिय स्वामी, जो चीज आपको प्रसन्न करती है वही मुझे प्रसन्न करती है, आप वही करिए.
Such surrender.
ये शर्त समर्पण है.
We worship Vishnu Priya on this day of Vasant Panchami because it is her surrender which is an integral part of the mercy that flooded our lives.
हम विष्णु प्रिया की आराधना करते हैं क्योंकि उनका जो शरणागति है वो हमारे जीवन का एक भाग है.
That very simple phrase encapsulates Sharanagati. My Lord, whatever pleases you is what will please me. Do what you must do. I am with you always.
और ये जो वाक्य है कि मैं जो आपको प्रसन्नता करती है वही मुझे प्रसन्न करता है, यही शरणागति का एक लक्षण है.
Lord Chaitanya told her that I am with you always.
चैतन्य महाप्रभु बताए कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ.
And later she was given a deity of Lord Gauranga, which is still being worshipped in Navadvip.
और बाद में उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अर्च विग्रह दिया गया जो अभी भी नवद्वीप में उसकी पूजा की जा रही है.
Until her very old age, she worshipped that deity.
और अपनी वृद्धावस्था तक वो उस विग्रह की आराधना करते रहे.
She would chant the Maha Mantra, and after every mantra, she would take one grain of rice and place it in a pot.
महामंत्र का जप करते और हर एक मंत्र के बाद वो एक दाना चावल का लेकर दूसरी तरफ रखते.
This is the way she offered every grain of rice in her love in Vipralamba in separation from the Lord.
इस तरह से वो हर एक दाने को विप्रलंब सेवा में भगवान को अर्पण करते थे.
Such a standard of cooking. Every grain she would weep in ecstasy and offer her entire heart as she chanted Hare Krishna, Hare,
Hare Krishna,
Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
And put that grain in a pot and then another grain. She would love in separation be crying Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
With great attention, with her mind fixed on the sound of the holy name with love. And at the end of the day, she put some water in the pot and cook the rice.
बहुत ध्यान पूर्वक हर एक मंत्र पर जप करते हुए वो बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करते हुए वो चावल का दाना रखते और दिन के अंत में वो जो चावल होते वो भगवान को अर्पण करते।
And then with pure love she would offer that rice to her Thakur ji, to her deity of Lord Gauranga.
और बड़े प्रेम के साथ वो अपने ठाकुर जी भगवान गौरंग महाप्रभु को वो चावल अर्पण करते।
And how she would offer it to him in his very, very divine presence. She was feeling such profound separation, yet she was feeling the Lord's presence right before her in the murti.
हालांकि वो विरह का अनुभव कर रहे थे, लेकिन वो भगवान के विग्रह में उनकी उपस्थिति का भी अनुभव कर रहे थे दिव्य चेतना से.
My beloved Gauranga, please accept this offering.
हे मेरे प्रिय गौरंगा, इस अर्पण को स्वीकार करिए.
And after some time, she would honor that maha maha prasad.
और कुछ समय बाद वो महा महा प्रसाद को ग्रहण करते थे.
We cannot imitate Vishnu Priya when we cook.
हम जब प्रसाद बनाते तो विष्णु प्रिया की नकल नहीं कर सकते.
But the principle is, every aspect of our cooking should be conscious offering of our love.
लेकिन सिद्धांत यह है कि हर एक चीज जो है वो प्रेम के साथ हमें अर्पण करना है.
We remember and honor and seek the blessings of Vishnu Priya on this day.
हम आदर पूर्वक उनका आशीर्वाद के प्रार्थना करते हैं श्रीमती विष्णु प्रिया देवी.
Basant Panchami is also the appearance day of Raghunandan Thakur.
ये बसंत पंचमी का दिन है, श्री रघुनंदन ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है.
He was the son of Mukunda Sarkar from Shrikhanda.
वे मुकुंद सरकार के पुत्र थे जो श्रीखंड के निवासी थे.
When he was just a little boy, his father was a grihastha, obviously, and he was a kaviraj, an Ayurvedic doctor.
उनके पिताजी जो है कविराज थे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे.
He was a grihastha who had a home, who had a wife, who had a family, and he was such an expert doctor. He was so devoted to his profession that even the kings and the emperors would call upon him for medical treatments.
वो इतने प्रसिद्ध वैद्य थे कि जो राजा भी हैं उनको बुलाते थे वैद्य के रूप में.
Like Bhaktivinoda Thakur, even in his household life and his occupation, he did everything with such excellence because ultimately he was offering it to Krishna.
जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने सब कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते थे क्योंकि अंततः वो कृष्ण के लिए थे.
One time, Mukunda was invited to give medical consultation to a king when he was sitting on a throne on a raised stage, much higher than this stage.
एक बार मुकुंद सरकार को बुलाया गया, राजा ने बुलाया कुछ वैद्य के रूप में सलाह लेने के लिए, जो एक बड़े आसन पर था जो इससे भी ज्यादा ऊंचे स्तर पे था.
As he was talking to the king, the sun was very bright, so one servant had a peacock fan to shade the king.
क्योंकि वहां पर बहुत धूप थी तो किसी के पास एक मोर पंखा था जिससे कि वो राजा को छाया प्रदान कर रहे.
As soon as Mukunda saw a peacock feather, he remembered Krishna.
जैसे उन्होंने मोर का पंख देखा उनको कृष्ण की याद आई.
And in remembering Krishna, his love exploded in an ecstatic state and he fell unconscious.
और कृष्ण की स्मृति में उनका प्रेम जागृत हुआ और वो बेहोश हो गए.
He fell down.
वो नीचे गिर गए.
And he rolled.
और वो लौटने लगे.
Off the stage.
स्टेज से नीचे.
Way, way down onto the ground.
बहुत बहुत नीचे जमीन.
The king was so worried what happened to him. He might be dead. So the king got off of his throne and ran down, and other people, his ministers, and they were around his body, and Mukunda opened his eyes.
और राजा जो है वो नीचे, उनको लगा शायद कहीं मृत्यु तो नहीं होगी, सारे मंत्री सब एकत्र हो गए और देखने लगे क्या हुआ, और मंत्री ने और फिर मुकुंद ने अपनी आंखें खोली.
The king asked, "What happened?"
और राजा ने पूछा क्या हुआ.
Now, Mukunda could have said, "Because I love Krishna so much, by seeing the peacock feather, I went into an ecstatic trance of samadhi."
मुकुंदा जवाब दे सकते थे कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करता हूँ, जैसे मैंने मोर को पंख को देखा तो मैं बिल्कुल भाव विवल हो गया.
But he was so humble.
इतने नम्र थे.
He said, "Actually, I have a disease like epilepsy, and sometimes this happens to me, and I fall unconscious. I'm sorry."
बोले मुझे एक बीमारी है अमरीकी की तरह और मुझे चक्कर आ जाते हैं, कभी गिर जाता हूँ, मुझे क्षमा करिए.
But the king was thinking, "It's because you have ecstatic love for Krishna and you saw the peacock feather."
लेकिन राजा कह रहे थे क्योंकि आपको कृष्ण के प्रति प्रेम है और आपने मोर के पंख को देखा, इसीलिए आप गिर गए.
Mukunda Sarakara was Brinda Devi in Krishna's eternal leela of Sri Vrindavan Dham.
वे भगवान श्री भगवान के वृंदावन धाम में वृंदा देवी थे नित्य रूप में.
And he had a deity at home, Gopinath.
और उनके घर में गोपीनाथ जी विग्रह थे.
And with great love and devotion, he would make offerings.
और बड़े प्रेम के साथ वो भगवान को भोग अर्पण करते.
But one morning, he was called by the king for a medical audience. So Mukunda Sarakar told little Raghunandan, "Today," he was only about 5 years old, he said, "Today you must make the offering."
और एक दिन राजा ने मुकुंद सरकार को बुलाया किसी कार्य से, तो मुकुंद ने बेटे रघुनंदन को बोले कि आज आप भगवान को भोग अर्पण करना.
But I don't know how to make offerings.
रघुनंदन बोले मुझे पता नहीं है कैसे भोग करना.
He said, "No, Chris, you just bring, your mother will give you the bhoga, you put it on the altar in front of Gopinath and you say, 'Gopinath, please eat,' and he will eat."
आपकी माता जी भोग तैयार करेंगे और आप लेकर भगवान के सामने रखना और बोलना गोपीनाथ ये स्वीकार करो और गोपीनाथ खा जाएंगे.
So, mother gave him plate. He went on altar. He placed it before Gopinath and said, "Please eat."
और माता के अदा ने प्लेट बना के दिया और वो भगवान गोपीनाथ के पास ले गए और प्रार्थना की कि आप स्वीकार करें.
And like the Lord does on the altars of our temples, he ate. And it became Mahaprasad.
जैसे भगवान मंदिरों में करते हैं वैसे भगवान ने स्वीकार किया और वो महाप्रसाद बन गया.
But the food was still there.
लेकिन वो चीज वहीं पर थे.
So Raghunandan again said, "Gopinath, please eat."
बोले रघुनंदन बोले भगवान गोपीनाथ स्वीकार कर.
Gopinath, please eat.
गोपीनाथ कृपया खाओ.
And he started to cry. Is it that I am so bad that you are not eating?
और वो रोने लगे कि भगवान आप इसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे.
My father told me that you will eat it, but you're not eating it.
मेरे पिताजी ने बताया कि आप स्वीकार करेंगे लेकिन आप नहीं खा रहे.
And he had such simple, pure, childlike devotion.
उनके अंदर बिल्कुल सरल शुद्ध एक बालक की तरह भक्ति थी.
Gopinath spoke to him.
गोपीनाथ ने उनसे बातचीत की.
He said, "I already ate it."
मैंने खा लिया है.
Through my eyes, I glanced and I accepted your love and devotion. Now it is prasad.
मैंने दृष्टि से इसको अपनी आँखों से दृष्टि डाली है और अब इसको स्वीकार कर लिया, ये प्रसाद हो गया.
Raghunandan said, "I don't know these big philosophies. All I know is the food is still here."
रघुनंदन बोले मुझे ये सब फिलॉसफी समझ में नहीं आ रहा, तो ये तभी मुझे दिखाई पड़ रहा है.
And he was crying, "Am I so bad that you will not eat my offering?"
और रोने लगे कि मुझे दुख हो रहा है कि आप ये भोग को नहीं स्वीकार कर रहे.
"Please eat."
कृपया खाइए.
Gopinath came down from his position and right in front of Raghunandan, he ate everything.
अब भगवान नीचे आए और रघुनंदन की आंखों के सामने सब कुछ खा लिया.
Raghunandan was very happy.
रघुनंदन बहुत खुश हो गए.
And he came off the altar.
और वो वापस आए बाहर.
And his mother was really confused because he was on the altar so long.
उनकी माँ बहुत चिंतित थी क्योंकि वो अल्टर में बहुत अंत समय तक अंदर थे.
What is my child doing on the altar so long?
मेरे बेटे अंदर क्या कर रहे हैं इतनी देर हो गई.
He came off with an empty plate.
और वो खाली प्लेट लेकर आए.
His mother suspected.
Raghunandan ate everything right on the altar.
सोचने लगे कि भगवान ने सब कुछ ले लिया.
She said, "Where is all the food?"
ये सब भोजन कहाँ चला गया?
He said, "Gopinath ate it."
रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब खा लिया.
She said, "He eats it every day, but where is it? Where is the Mahaprasad?"
उन्होंने पूछा, ठीक है, भगवान ने खाया, लेकिन महाप्रसाद किधर है?
He said, "No, no, he ate everything."
नहीं नहीं, भगवान ने सब कुछ खा लिया.
So mother didn't know what to do.
मदर, माता को पता नहीं था क्या करें.
After some time, Mukunda came home.
उसके बाद कुछ समय बाद मुकुंद स्वयं घर में लौट के आए.
And he would not eat anything anywhere except Gopinath's Mahaprasad.
वो कहीं बाहर का कुछ नहीं खाते, सिर्फ गोपीनाथ का महाप्रसाद.
So he was coming home quite late, and he asked his wife, "Where is Prasad?"
और वो काफी देर से आया और पूछा अपनी पत्नी से, प्रसाद किधर है?
She said, "Today there is no Prasad."
उन्होंने बताया, आज कोई प्रसाद नहीं है.
Why there is no Prasad?
पूछा ऐसे क्यों, प्रसाद क्यों नहीं?
She said, "Raghunandan says I made whole plate Rajbhog for Gopinath, everything." And Raghunandan took it on the altar, and he came out after a long, long time with empty plate.
और उन्होंने बताया कि मैंने तो सब कुछ भोग अर्पण किया था और भगवान को, गोपीनाथ को अर्पण किया, और फिर रघुनंदन बाहर आए बिना इसके प्रसाद.
मुकुंद asked Raghunandan what happened to the prasad.
मुकुंद ने अपने बेटे रघुनंदन से पूछा कि प्रसाद का क्या हुआ.
Raghunandan said Gopinath ate it.
रघुनंदन ने जवाब दिया कि गोपीनाथ ने सब खा लिया.
Mukunda Sarakar, because he was such a great devotee and nitya siddha Vaishnav, he could understand his Raghunath was not an ordinary person.
Mukunda Sarkar, kyunki wo itne mahan bhakt the, wo jante the ki unke bete sadharan vyakti nahi hain.
He said, "Tell me everything."
Unne pucha ki sab bataiye mujhe.
Raghunandan said, "I offered it just like you told me, and I asked him to eat it, but he wouldn't eat it. And I asked him again and again and again. And when I started crying because you told me he would eat it, and I didn't want to disobey you. I wanted to please you. You're my father." So Gopinath asked, "Why are you crying?" And I told him, and then he came down and ate it.
फिर रघुनंदन ने पूरी कथा बताई कि किस तरीके से मैं पहले भगवान को भोग सिखाया, भगवान ने नहीं खाया, फिर मैं रोने लगा और बार बार प्रार्थना की, तब भगवान नीचे आए और फिर सब कुछ उन्होंने ग्रहण कर लिया.
Mukunda said, "Make another offering just like that. Here is a laddu. Make offering."
और मुकुंद ने कहा कि अभी आप फिर से अर्पण करिए एक लड्डू का.
So special laddu Raghunandan Thakur put on altar.
और एक विशेष लड्डू रघुनंदन ठाकुर ने भगवान के ऑल्टर पर अर्पण किया.
And he said, "Gopinath, please eat."
और उन्होंने भगवान से निवेदन किया, आप इसको स्वीकार करें.
Mukunda Sarakar was secretly hiding in a secluded place and watching from a distance.
और उनके पिताजी मुकुंद जी छिपकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है.
And Raghunandan cried, "Please eat."
और रघुनंदन ने फिर से रो के प्रार्थना की, कृपया स्वीकार करें.
गोपीनाथ put down his flute was down, and he reached his lotus like hand and picked up the laddu and took a bite.
और गोपीनाथ नीचे आए और उन्होंने वो लड्डू का लिया और सब कुछ भाग खाया.
When Mukunda saw the deity moving around and eating physically, he was shocked, and he came out from his hiding place and amazed.
और जब मुकुंद ने देखा तो कि भगवान स्वयं यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, और ये इतना उनको आश्चर्य हुआ कि वो बिल्कुल वहाँ पे सामने आए.
As soon as Gopinath saw someone else was there, he put the laddu down.
जैसे गोपीनाथ देखा कि कोई और आ रहा है, तो उन लड्डू वापस रख दिया.
If you go to Shrikanta, that laddu is still there with a bite in it. 450, over 500 years ago, this happened.
और अभी आप जाएंगे श्रीखंड में तो उस स्थान पर अभी भी वो लड्डू का भाग वहाँ पर पड़ा है, हालांकि करीब 500 साल हो गए।
And later, Raghunandan Thakur became the pujari for Gopinath.
और बाद में रघुनंदन ठाकुर भगवान गोपीनाथ के लिए पुजारी बन गए।
And he loved to offer Gopinath Kadamba flowers.
और वो भगवान गोपीनाथ को कदंब के फूल अर्पण करते।
Because of all flowers, the Kadamba is the favorite of Krishna.
क्योंकि सारे फूलों में जो है कदंब जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है।
Because the color of the Kadamba flower resembles the color of the complexion of Srimati Radharani. It is golden.
क्योंकि कदंब वृक्ष के जो फूल हैं वो सुनहरे हैं जो कि श्रीमती राधा रानी का वर्ण है।
And intoxicatingly fragrant.
और उसका जो सुगंध है वो बहुत ही दिव्य नशीले हैं।
So outside of the temple of Gopinath there was one tree, and just to please Raghunandan, 365 days a year, every single day, there were two Kadamba flowers that were fully blossomed right at the time of the offering.
और रघुनंदन की प्रसन्नता के लिए उस मंदिर के बाहर एक कदंब वृक्ष है जहाँ पर हर रोज जो है दो फूल जो है प्रकट होते भगवान गोपीनाथ को अर्पण करने के लिए।
Raghunandan, in the greatest ecstasy of love, would offer those two flowers to Gopinath.
और रघुनंदन बिल्कुल भाव विवल होकर ये दो फूल जो हैं भगवान गोपीनाथ जी को अर्पण करते।
Now, for those of you who know Kadamba flowers, they only grow in the late spring and in the early summer.
आप में से जो लोग जानते हैं कि ये जो कदंब के वृक्ष हैं वो वसंत के अंत में प्रकट होते हैं।
No other time.
और किसी समय में वो नहीं प्रकट होते।
But these flowers were fully blossomed every day of the year.
लेकिन ये जो फूल हैं विशेष वो साल के हर एक दिन में प्रकट होते।
And what was even more special?
और उसकी क्या विशेषता क्या होती?
The tree was not even a kadamba tree.
और वो पेड़ जो है वो कदंब का पेड़ नहीं था।
That is the beautiful reciprocation between Gopinath and Raghunandan.
ये गोपीनाथ में और रघुनंदन में प्रेम का आदान प्रदान है।
Raghunandan's only pleasure was giving something wonderful to Krishna.
रघुनंदन को एक ही खुशी थी कि भगवान को सबसे अच्छी चीज अर्पण किए जाए।
Krishna's favorite thing.
कृष्ण के जो बहुत ही प्रिय चीज है।
And Krishna's greatest happiness was giving Raghunandan happiness. And Raghunandan's happiness was only giving Gopinath happiness. And Gopinath's happiness was only giving Raghunandan's happiness. And Raghunandan's happiness was only giving Gopinath happiness.
Maharaj bata rahe hain ki Gopinath...
His name is Krishnananda.
महाराज बता रहे हैं कि गोपीनाथ जी को खुशी होती कि रघुनंदन को प्रसन्नता में रघुनाथ को प्रसन्न रघुनंदन को प्रसन्नता होती गोपीनाथ को प्रसन्न करने में और गोपीनाथ को प्रसन्नता होती रघुनंदन को इस तरह से वन मोर टाइम
दैट इज भक्ति
यही भक्ति है
पत्रम पुष्पम फलम तोयम कृष्ण इज कॉन्कर्ड बाय इवन द ऑफरिंग ऑफ अ फ्लावर
भगवान एक फूल अर्पण करने से भी जीत लिए जाते
And a devotee is offered by the love of Krishna and Krishna is conquered by the love of devotee and devotee is conquered by the love of Krishna and Krishna is conquered by the love of devotee and bhakti is the great joy of being conquered by the love of the Lord
Krishna jo hai bhakton ko jeet prem se jeet jate aur bhakta jo hai Krishna ke prem se jeet jate aur bhakti ka matlab hai ki us vijay mein hi prasannta rehna
And later, when Raghunandan grew up, older, he was, every year in the Rath Yatra in Puri, he would come with the residents of Shikanda. And Lord Chaitanya personally selected him to be lead dancer in one of the seven parties.
और बाद में जब रथ यात्रा के समय रघुनंदन हर वर्ष आते और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको एक ग्रुप में जो मुख्य नृत्यकार जो नृत्य सिखाने वाले भक्तों में रखते
So these are just a few of the beautiful pastimes that have recently been honored in our Vaishnav calendar.
ये तो कुछ कुछ से कुछ लीलाएं हैं जो कि वैष्णवों में आदर किए गए हैं.
And I'll end with one little incident that took place in Puri.
मैं एक छोटी सी घटना से अंत करूंगा.
Lord Chaitanya was giving instructions to his associates just before they were leaving to go back to their homes.
जब सब भक्त वापस अपने घरों में जा रहे होते तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षाएं प्रदान कर रहे थे.
And to the people of Srikanda, he gave three special instructions, which Srila Prabhupada explains is the culture of Krishna consciousness.
और श्रीखंड के वासियों को उन्होंने तीन आज्ञाएं दी जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना का संस्कृति है.
To Mukunda, he said, you should earn spiritual and material wealth.
मुकुंद को उन्होंने आज्ञा दी कि आप आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति कमाओ.
To Raghunandan, he said, you should worship the deity.
रघुनंदन से कहा कि आप अर्च विग्रह की सेवा करो.
Of Lord Shri Krishna.
कृष्ण की आराधना.
And to Raghunandan's uncle, the younger brother of Mukunda, Narahari Sarakar, he said, you should be with the devotees and spread this movement.
और उनके चाचा नरहरि सरकार को बताया कि आप भक्तों के साथ रहो और इस आंदोलन का प्रचार करो.
So there are essentially three kinds of devotees. Mukunda was a grihastha. He was a congregational devotee who achieved the highest perfection by performing, as we described, his profession with excellence. But his sadhana, his worship, he saw everything as the service of Krishna.
जैसे पहला उदाहरण मुकुंद का बताया गया कि जो वे गृहस्थ थे और वो अपना जो व्यवसाय है वो इतने अच्छे तरीके से करते थे और वो उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा के स्वरूप में अर्पण करते थे.
To earn spiritual and material wealth.
भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना.
In a mood of devotion.
भक्ति की भावना से.
And Raghunandan was pujari.
और रघुनंदन पुजारी थे.
He spent most of his day doing seva for Shri Krishna on the altar.
वो अपना ज्यादा समय बिताते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हुए.
And for Narahari, to live in the association of devotees and spread the great mission.
और नरहरि को कि भक्तों के संग में रहना और इस महान मिशन का प्रचार कार्य करना.
Bhakti Vinod Thakur sang, Grihe Thako, Vane Thako, Sadahari Bole Thako. Whether one is a grihastha or a sadhu, by living according to these principles of Lord Chaitanya and always chanting the holy names, we can all attain the highest perfection.
भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं चाहे हम गृहस्थ हो या सन्यासी हो इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने से हम जीवन की परम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं.
If we see the beautiful dancing of Rath Yatra, the lead dancers in one group, Swarup Damodar Goswami, who is a sannyasi, he was singing.
हम रथ यात्रा के समय अलग अलग ग्रुप देखते हैं. एक ग्रुप में स्वरूप दामोदर जो है मुख्य गायक हैं जो कि सन्यासी.
In that group, Lord Nityananda, who was a grihastha, was dancing.
और नित्यानंद प्रभु जो कि गृहस्थ हैं उसमें मुख्य नृत्य करने वाले.
In another group, Srivas Thakur, whose wife is Malini, a great grihastha, was singing.
और दूसरे ग्रुप में श्रीवास ठाकुर जिनके पत्नी का नाम मालिनी है वो गाते थे.
And Haridas Thakur, the great renunciate, was dancing.
और हरिदास ठाकुर जो महान सन्यासी हैं वो नृत्य कर रहे हैं.
In this way, everyone was one in heart together, honoring, respecting each other according to their particular varna and ashram, and everyone together in loving spirit of servitude would chant the holy names in Harinam Sankirtan. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Thank you very much.
Dhanyavaad.